वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में सूरह नूर की आयतों की व्याख्या समाप्त हुई और अब हम सूरह फुरकान की आयतों की समीक्षा आरम्भ करेंगे। ये कुरान मजीद का 25वां सूरा है और मक्का नगर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। इस सूरे में 77 आयतें हैं। फुरकान कुरान मजीद ही का एक अन्य नाम है जिसका अर्थ है सत्य को असत्य से अलग करने वाला। आइए पहले सूरह फुरकान की आयत नंबर 1 की तिलावत सुने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا।
ईश्वर के नाम से जो अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। विभूतिपूर्ण है वो ईश्वर जिसने ये फुरकान अपने बंदे मोहम्मद पर उतारा ताकि वे सारे संसार के लिए सचेत करने वाले रहें।
विभूतिपूर्ण अस्तित्व वो अस्तित्व है जो सदैव भलाई का स्रोत होता है और दूसरों के लिए उसका लाभ कभी भी समाप्त नहीं होता। कुरान मजीद ऐसी किताब है जो ईश्वर की ओर से पैगंबर इस्लाम के पास भेजी गई है, किंतु उसका लाभ प्रलय तक सभी को मिलता रहेगा और जो भी ईश्वरीय मार्गदर्शन से लाभ उठाना चाहता है तो उसके लिए इस किताब से बढ़कर और क्या विभूति हो सकती है जिसने पूरे इतिहास में असंख्य लोगों का अंधेरे से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन किया है।
असत्य के बीच से सत्य को पहचानना कठिन काम है, क्योंकि एक ओर तो सही व गलत की पहचान के संबंध में मनुष्य का ज्ञान बड़ा सीमित व अपर्याप्त है और दूसरी ओर उसकी आंतरिक इच्छाएं और बाहरी अपेक्षाएं मनुष्य को गलत मार्ग पर खींचने लगती हैं या फिर उसे पूर्ण रूप से असमंजस में डाल देती हैं। किंतु कुरान मजीद जो ईश्वरीय ज्ञान का प्रतीक बनाकर मनुष्य के हवाले किया गया है, जीवन के विभिन्न मामलों में सत्य व असत्य को स्पष्ट रूप से बयान करता है तथा सही व गलत की पहचान के संबंध में मनुष्य का मार्गदर्शन करता है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी किताब के आधार पर सत्य से दूर हो जाने के खतरे की ओर से सचेत किया है और लोगों को गलत विचारों को स्वीकार करने तथा अनुचित कार्य करने की ओर से चेतावनी दी है। उनकी चेतावनी केवल अपने समय के लोगों से विशेष नहीं है, बल्कि हर जाति व समुदाय के लोग, चाहे वे किसी भी स्थान या समय के हों, उनके निमंत्रण के पात्र हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि कुरान मजीद एक विभूतिपूर्ण किताब है जो एक विभूतिपूर्ण अस्तित्व की ओर से भेजी गई है।
विभिन्न मामलों में सही और गलत की पहचान का सर्वोत्तम साधन कुरान मजीद की आयतें हैं।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी सार्वभौमिक व सर्वकालिक है और इसका किसी विशेष जाति या समुदाय से संबंध नहीं है।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 2 की तिलावत सुने।
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا।
वो वही है जिसका साम्राज्य आकाशों और धरती पर है और उसने न तो किसी को अपना बेटा बनाया और न साम्राज्य में उसका कोई समकक्ष है। उसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसे ठीक अंदाजे पर रखा।
पिछली आयत में ईश्वर की सबसे बड़ी अनुकंपा की ओर संकेत करने और लोगों के मार्गदर्शन में कुरान मजीद व पैगंबर की भूमिका का उल्लेख करने के बाद इस आयत में कुरान सृष्टि की रचना और अनन्य ईश्वर की ओर से उसके मामलों की युक्ति की अनुकंपा का वर्णन करता है और कहता है कि जिस ईश्वर ने तुम्हारे लिए धार्मिक आदेश निर्धारित किए हैं उसी ने सृष्टि की व्यवस्थित ढंग से रचना की है और इन दोनों के बीच पूर्ण समन्वय पाया जाता है।
ईश्वर न केवल रचयिता बल्कि सृष्टि का स्वामी व शासक भी है तथा कोई भी किसी भी स्थिति में उसका समकक्ष और सहभागी नहीं है। कोई भी वस्तु उसके साम्राज्य से बाहर नहीं है और धरती व आकाश सभी उसकी रचनाएं हैं। वो आवश्यकता मुक्त है और कोई भी उसके जैसा नहीं है कि वो किसी को पत्नी बनाए या उसकी संतान हो, क्योंकि मूल रूप से संतान की आवश्यकता किसी न किसी कमी को पूरा करने के लिए होती है और जो समस्त सृष्टि का स्वामी हो उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। इतने वैभव और महानता के स्वामी पैगंबर भी उसकी रचनाओं में शामिल हैं और उन्हें ईश्वर का बेटा कहना एक गलत आरोप है।
ईसाई सब ने सीखा कि सृष्टि पर केवल एक व्यवस्था, एक इरादे और एक युक्ति का राज है और संपूर्ण सृष्टि पर राज केवल ईश्वर से विशेष है।
सभी रचनाओं की सृष्टि एक अनन्य स्रोत ने की है और वही उनका संचालन करता भी है।
सृष्टि की व्यवस्था कोई आकस्मिक या संयोग वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एकदम सटीक युक्ति के आधार पर अस्तित्व में आई है और इसके कानून बौद्धिक आधार पर बनाए गए हैं।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 3 की तिलावत सुने।
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا।
और अनेक ईश्वरवादियों ने उसके स्थान पर ऐसे पूज्य बना लिए जो किसी चीज की सृष्टि नहीं करते और वे स्वयं ही उसकी रचनाएं हैं। उन्हें न तो अपनी हानि का अधिकार प्राप्त है और न लाभ का, और न उन्हें मृत्यु का अधिकार प्राप्त है और न जीवन का, और न ही दोबारा जीवित होकर उठाए जाने का।
पिछली आयतों में ईश्वर के अनन्य तथा सृष्टि के स्वामी होने पर बल देने के बाद यह आयत ईश्वर के बारे में अनेकेश्वरवादियों के दृष्टिकोण को बयान करते हुए कहती है कि उन्होंने ऐसी प्रतिमाओं को सृष्टि के संचालन में ईश्वर का समकक्ष मान लिया है जो न तो अपनी रचयिता है और न ही अपने स्वामी, न अपने जीवन व मृत्यु में उनकी कोई भूमिका है और न ही मनुष्यों के जीवन में उनका कोई प्रभाव है। वे न तो किसी जीव को जीवन प्रदान कर सकती हैं और न ही किसी का जीवन ले सकती हैं। वे न आरंभ से सृष्टिकर्ता थीं और न ही मरने के बाद मनुष्यों को पुनर्जीवित कर सकती हैं। इसी प्रकार वे न तो इस संसार में किसी की समस्या का समाधान कर सकती हैं और न ही प्रलय में उनसे कुछ बन पड़ेगा।
स्वाभाविक है कि इस प्रकार की प्रतिमाओं की ओर हर प्रकार का ध्यान मनुष्य को अपने रचयिता से दूर कर देता है और सृष्टि तथा सृष्टिकर्ता के बीच दीवार खड़ी कर देता है। ये मूर्ति पूजा करने वालों की आस्था के विपरीत है, जो मानते हैं कि ये प्रतिमाएं ईश्वर की ओर मनुष्य के ध्यान का कारण बनती हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि कुरान मजीद अनेकेश्वरवादियों की आस्थाओं को रद्द करते हुए उनसे तर्क के साथ बात करता है।
न केवल प्रतिमाएं बल्कि मनुष्य भी एक दूसरे के जीवन व मृत्यु तथा अन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं रखते और उनका नाम ईश्वर के साथ नहीं लिया जाना चाहिए।
जो अपनी किसी क्षति को दूर नहीं कर सकता और न अपना कोई हित प्राप्त कर सकता हो, वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकता।